डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट यशाया 17:22 ईसा 44-46 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट। यह यशाया की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 22 यशाया अध्याय 44-46 है। हे भगवान, इस प्यारे दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके उस जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने अपनी दुनिया में रखा है। धन्यवाद की आदर्श जीवन है, जीवन सर्दी की मौत से लौट रहा है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने क्रूस पर, खाली कब्र में और पिंतेकुस्त में हमारे लिए जो किया है, उसके कारण हमें भी हमेशा के लिए जीवन मिलता है। यद्यपि हम उन निकायों को देखते हैं जो विफल हो रहे हैं, फिर भी हम जान सकते हैं कि हमारी आत्माएं आप में हमेशा के लिए जीवित हैं, और हम उस वादे के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपने शब्द का अध्ययन करने का अवसर देने के लिए फिर से धन्यवाद। इन समृद्ध अध्यायों के लिए धन्यवाद, और हम फिर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे और हमें उन मुद्दों को पहचानने में मदद करेंगे जिन्हें हम में से प्रत्येक को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आपके साथ रहते हैं और अनुमति देते हैं तुम हम में रहो। धन्यवाद। आपके नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। ठीक है, फिलहाल हम तय समय से एक सप्ताह पीछे हैं। यदि आपने अपना शेड्यूल तय कर लिया है तो 10 जून मेरे लिए बिल्कुल अंतिम तिथि है। वह आखिरी सोमवार है जब मैं गर्मियों में खाली रहूंगा, इसलिए हमें तब रुकना होगा। तो मैं जो योजना बनाने जा रहा हूं वह यह है कि हम अगले सप्ताह 47 और 48 करेंगे। अध्ययन मार्गदर्शिका वहां उपलब्ध है। 22 तारीख को हम अध्याय 49-51 करेंगे और 29 तारीख को हम 52-53 करेंगे, और यह हमें फिर से ट्रैक पर वापस लाएगा। मैंने 53 को एक पूरी शाम बिताने की योजना बनाई थी, लेकिन 52 इतनी लंबी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा दोगुना हो जाएंगे। हाँ, आप वहां 3 सप्ताह गिन रहे हैं और केवल 2 ही बचे हैं। अगला सप्ताह 22 तारीख है। 22वां सो है। चलो देखते हैं। आज रात 15 तारीख है ना? ठीक है, तो हमें कुछ और सोचना होगा। वैसे भी अगले हफ्ते हम 22 तारीख को 47 और 48 करेंगे और वहां से चले जाएंगे। अध्याय 44 श्लोक 1-5 में हमारे पास फिर से आत्मा के आने की एक और भविष्यवाणी है। और हमारे पास यहां चौथा कारण है कि क्यों परमेश्वर के सेवकों को डरना नहीं चाहिए। पहला था, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा, मैं आपकी मदद करूंगा। तीसरा, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। अब यह चौथा कारण क्या है कि हमें डरना नहीं चाहिए? पद 2 और 3, मत डर क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल उंडेलूंगा, मैं तुम पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। इसका हमसे क्या संबंध है? मत डरो क्योंकि मैं तुम पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। यह डरने का एक कारण क्यों नहीं है? खैर, वह हमारे साथ है। हाँ, वह हमें मजबूत करेगा। उनकी आत्मा की उपस्थिति हमें शक्ति देगी। और कुछ? बुद्धि। आत्मा वह है जो बुद्धि देता है। आत्मा भी वह है जो हमें मसीह का जीवन जीने में सक्षम बनाती है। इसलिए हमें उस दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है जो आकर कहता है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बराबरी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा इस प्रकार आता है, याद रखें, यह शब्द उतना सांत्वना नहीं है जितना इसे प्रोत्साहित किया जाता है। पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहन देने के लिए आता है, हमें प्रलोभन के सामने, आरोप के सामने, दुश्मन हम पर जो कुछ भी फेंक सकता है उसका सामना करने में सक्षम बनाता है। आत्मा यहाँ है। अब इस विशेष मामले में वह कहता है, मैं तुम्हारी संतानों पर अपनी आत्मा उंडेलने जा रहा हूँ। जब वे निर्वासन में गए तो किस बात का डर था? यह सही है, राष्ट्र लुप्त हो जाएगा, उनके बच्चे बुतपरस्त बेबीलोनियाई बन जाएंगे और यही इसका अंत होगा। परंतु परमेश्वर कहता है, नहीं, मैं उन पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। और श्लोक 5 में परिणाम क्या होगा? आत्मा का प्रभाव क्या होगा? खैर, वे कह सकते हैं, मैं भगवान हूँ। ठीक है, प्रभु से संबंधित होने की, प्रभु के साथ तादात्म्य स्थापित करने की इच्छा होगी। कोई याकूब के नाम से पुकारेगा, कोई अपने हाथ पर यहोवा का लिखेगा और अपना नाम इसराइल के नाम से रखेगा। तो पहचान का मुद्दा, पवित्र आत्मा हमें प्रभु के साथ अपनी पहचान बनाने में सक्षम बनाता है। बाइबल के माध्यम से बार बार यह प्रश्न आता है कि आपके जीवन का राजा कौन है? आप किसके हैं? आप स्वयं को किसके साथ पहचानते हैं? आप अपने आप को कैसे समझते हैं? और पवित्र आत्मा हमें स्वयं को प्रभु के साथ पहचानने में सक्षम बनाने के लिए आता है। हाँ, मैं प्रभु का हूँ। कोई अगर, कोई और, कोई परंतु नहीं, मैं उनका हूँ। तो ईसाई जीवन में जो निरंतर मुद्दा आता है वह इच्छा का मुद्दा है। क्या मैं अपना हूँ या मैं यहोवा का हूँ? और आत्मा हमें उस लड़ाई को निर्णायक तरीके से जीतने में सक्षम बनाता है। श्लोक 6-8 में हमारे पास मूर्तियों के विरुद्ध मामले का पुनर्कथन है। यहाँ मैं हूँ में से एक और है। मैं पहला हूँ, मैं आखिरी हूँ, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। श्लोक 6 में नामों पर ध्यान दें। इस प्रकार कहता है, और याद रखें, जब आप भगवान को छोटे कैप में देखते हैं जैसे कि यह यहोवा है। यहोवा यों कहता है, अब अन्य 3 उपाधियां क्या हैं जिनका उपयोग उसकी पहचान के लिए किया जाता है? इसराइल का राजा, इसराइल का उद्धारक और सर्वशक्तिमान प्रभु, सेनाओं का प्रभु, स्वर्ग की सेनाओं का प्रभु। अब उन 3 अतिरिक्त उपाधियों को यहोवा के पास जमा करने का क्या महत्व है? वे हमारी समझ में क्या जोड़ते हैं कि ईश्वर कौन है? वह यहोवा है और वह राजा है। एक बार फिर चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच चर्चा की कहानी बताई गई है और रूजवेल्ट ने कहा, अब आप समझ गए हैं विंस्टन कि लोकतंत्र सभी मानव सरकारों में सबसे बेहतरीन है। और विंस्टन चर्चिल ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, हाँ, और स्वर्ग की सरकार एक राजशाही है। तो यहाँ लोकतंत्र नहीं है, वह इज़राइल के राजा हैं। अब उसका मतलब क्या है? वह एकमात्र शासक है। और दूसरी तरफ से क्या हाल है? इज़राइल की तरफ से उसकी पूजा और परमेश्वर का उनके प्रति दायित्व है। इज़राइल उसका राज्य है। क्या वह अपना राज्य किसी और के नियंत्रण में छोड़ सकता है? नहीं, वह नहीं कर सकता और इसलिए वह मुक्तिदाता है। और सेनाओं का प्रभु या सर्वशक्तिमान प्रभु जो भी आपके पास है, या स्वर्ग की सेनाओं का प्रभु, वह हमारी समझ में क्या जोड़ता है? सर्वशक्तिमानता, वह ऐसा करने में सक्षम है। तो उसे एक संबंध परक दायित्व मिला है, वह इज़राइल का राजा है और इसलिए वह छुटकारा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और वह छुटकारा दिलाने में सक्षम है। हमें उन प्रश्नों पर वापस ले जाता है जिनके बारे में हमने पहली बार तब बात की थी जब हम अध्याय 40 को देख रहे थे। क्या वह कुछ देना चाहता है? हाँ। क्या वह उद्धार करने में सक्षम है? हाँ। क्या वह उद्धार करने वाला है? हाँ। ठीक है, अब याद रखें कि भगवान देवताओं के संबंध में क्या दावे करते हैं। वे हमारे यहाँ बहुत ही संक्षिप्त रूप में उपलब्ध हैं। उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। देवता क्या नहीं कर सकते? ठीक है, श्लोक 7 का अंतिम भाग देखें। देवता क्या नहीं कर सकते? वे भविष्य नहीं बता सकते। वे निरंतर जारी रहने वाली प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, और प्राकृतिक व्यवस्था केवल वही जानती है जो वह हमेशा करती है। कुछ नया घटित होने के लिए जो पहले कभी नहीं हुआ है, देवता संभवतः यह नहीं बता सकते। लेकिन जो सिस्टम के बाहर खड़ा है, जिसने सिस्टम बनाया है, वो बिल्कुल नया काम कर सकता है, वो पहले से बता सकता है। देवता ऐसा नहीं कर सकते। यह मेरे लिए हमेशा दिलचस्प है कि पुराने नियम की विद्वता की दुनिया में लगभग पहली चीज जिसे नकारा जाता है वह यह है कि पूर्वानुमानित भविष्यवाणी जैसी कोई चीज हो सकती है। यदि बाइबल में कोई भविष्यवाणी है तो वास्तव में घटना वास्तव में पहले घटित हुई थी और फिर किसी ने भविष्यवाणी में लिखा था। लेकिन यह भविष्यवक्ता ईश्वर के ईश्वरत्व को इस तथ्य पर आधारित करता है कि वह भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। और फिर भी पुराने नियम के विद्वान प्रकृतिवाद में इतने फंसे हुए हैं, कहते हैं कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। यह सही है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हम यहाँ किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। तो डरो मत, डरो मत। यहां पांचवा कारण आता है। हमें क्यों नहीं डरना चाहिए? श्लोक 8, हाँ तुम मेरे हो। हाँ, और उसने बता दिया है कि पहले क्या हो चुका है, क्या होने वाला है उसके घटित होने से पहले। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह भविष्यवाणी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भविष्य सूचक भविष्यवाणी इसलिए नहीं दी जाती ताकि हम भविष्य की समय सारिणी तैयार कर सकें। यदि पिछले 2000 वर्षों में हमें कुछ भी प्रदर्शित किया गया है तो वह यही होना चाहिए। वस्तुतः हर बार जब कोई समय सारिणी तैयार करने के लिए पूर्वानुमानित भविष्यवाणी का उपयोग करने का प्रयास करता है तो वह गलत होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने हमेशा फ्रांसिस असबरी की पत्रिका का आनंद लिया है, जिसमें एक बिंदु पर वे कहते हैं, फादर वेस्ले का मानना है कि ईसा मसीह 1812 में वापस आएंगे। मेरा मानना है कि यह 1839 के करीब है। यह भविष्यवाणी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भविष्य सूचक भविष्यवाणी इसलिए नहीं दी जाती ताकि हम भविष्य की समय सारिणी तैयार कर सकें। यदि पिछले 2000 वर्षों में हमें कुछ भी प्रदर्शित किया गया है तो वह यही होना चाहिए। लेकिन फिर परमेश्वर भविष्य की भविष्यवाणी क्यों करता है? तो हम आश्वस्त रह सकते हैं। ईश्वर भविष्य जानता है, ईश्वर के हाथों में भविष्य है, और हम आज बिना किसी डर के जी सकते हैं। वह यह कैसे करेगा? यही उसका व्यवसाय है। वह ऐसा कब करने जा रहा है? यही उसका व्यवसाय है। लेकिन उसके नियंत्रण में सभी चीजें हैं। ठीक है, श्लोक 9 से 20 में हमारे पास मूर्तियों और मूर्ति निर्माण के विरुद्ध एक लंबी आलोचना है। इसमें व्यंग्य टपक रहा है, और आप ध्यान दें कि यह गद्य में है, यह कविता में नहीं है, जैसे कि पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि यहां क्रम में कहा गया हो, लेकिन यह सेटिंग में फिट बैठता है। तो यदि आप श्लोक 9 से 20 तक जो कुछ कहते हैं उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप इसे एक या दो वाक्यों में कैसे सारांशित करेंगे? रोजमर्रा के उपयोग की चीजें बनाना बेकार है, जैसे आग जो लकड़ी और उस तरह की चीजों को जला देती है। साधारण सांसारिक सामग्री से भगवान बनाना बेकार है। हाँ हाँ वह बिल्कुल यही कह रहा है। और यह चीज जो हमने बार बार देखी है, आप या तो अपने निर्माता की पूजा कर सकते हैं या आप पूजा करने के लिए अपनी छवि में एक भगवान बना सकते हैं। अपनी पसंद लो, अब वह कहता है, जैसे हम अंत की ओर उतरते हैं, श्लोक 19, कोई विचार नहीं करता और न यह कहने के लिए कोई ज्ञान या विवेक है कि उसका आधा भाग मैंने आग में जला दिया, मैंने उसके अंगारों पर रोटी पकाई, मैंने मांस भूना और खाया खा चुका, और क्या मैं बचे हुए को घृणित ठहराऊं? अब यदि आप वहां की पृष्ठभूमि को देखें, तो घृणा एक हिब्रू शब्द है जो किसी ऐसी चीज का वर्णन करता है जो घृणित है। वे चीजें जो यहोवा के लिए घृणित हैं, वे ऐसी चीजें हैं जो उसकी सृष्टि व्यवस्था के विपरीत हैं। और मैं आपको वहां कुछ संदर्भ देता हूं, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है, लेकिन यदि आप रुचि रखते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। अब मूर्ति निर्माण ऐसी चीज क्यों होगी जो परमेश्वर के लिए विशेष रूप से घृणित है? ठीक है ठीक है ठीक है। यदि आपने जो बनाया है उस पर भरोसा करते हैं, तो आप अपने आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? वही भगवान है। ठीक है, यदि आपने जो बनाया है उस पर आप भरोसा करते हैं, तो वह कुछ कैसे हो सकता है यदि मैंने इसे स्वयं बनाया है? हाँ 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 हाँ। जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया की पूजा कर रहे हैं, हु? वह संसार जिसे ईश्वर ने बनाया। हाँ हाँ, इसलिए यह घृणित है। रचना उपयोग के लिए नहीं दी गई थी। क्षमा करें, पूजा करने के लिए नहीं दिया गया। इसे इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था। इसे खेती के लिए दिया गया था। इसे विकसित करने के लिए दिया गया था, लेकिन उसे पूजा करने के लिए नहीं दिया गया। और इसलिए जब हम उसकी पूजा करते हैं तो वह परमेश्वर के लिए घृणास्पद है। यह ईश्वर के लिए घृणित है क्योंकि यह उसके सृजन उद्देश्यों में फिट नहीं बैठता है। हाँ, यह हमें ईश्वर से अलग करता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भगवान हूं और मूर्ति मेरी रचना है। हाँ, हमने बात को बिल्कुल ठीक कर दिया है। मुझे लगता है कि यह ऑगस्टीन ही हैं जिन्होंने कहा था, मूर्ति पूजा उस चीज का उपयोग है जिसकी पूजा की जानी चाहिए और पूजा उसकी है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। मूर्ति पूजा उस चीज का उपयोग है जिसकी पूजा की जानी चाहिए और जिसकी पूजा की जानी चाहिए। तो फिर श्लोक 21 और 22 में, यदि 9 से 20 तक एक सम्मिलन है तो मुझे यकीन नहीं है कि यह है, लेकिन मुझे लगता है कि संभवतः यह है। यदि यह एक सम्मिलन है तो श्लोक 6, 7 और 8 पर वापस जाएं। श्लोक 21 में हमें कौन सी बातें याद रखनी हैं? याद रखें भगवान कौन है। नंबर 1, मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। ठीक है, डरो मत। और याद रखें कि यहोवा ने अपनी पहचान कैसे बनाई। मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं तुम्हारा उद्धारक हूं, मैं सेनाओं का प्रभु हूं। तो उसके आलोक में फिर वह क्या कहता है कि उसने 21 और 22 में क्या किया है? खैर, इज़राइल को भुलाया नहीं गया है क्योंकि ईश्वर ने उसकी मुक्ति के लिए प्रावधान किए हैं और वह बाध्य नहीं है और वह मुक्ति दिलाएगा। हाँ हाँ, यह दिलचस्प है। श्लोक 21, मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, श्लोक 21 दी, याद रखें कि आपको भुलाया नहीं जाएगा। मैं याद रखूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो मैंने तुम्हें बनाया, वह नंबर 1 है। श्लोक 22 हमें दूसरी चीज बताता है जो वह करने जा रहा है। मैंने तुम्हें बनाया है और मैंने तुम्हारे पापों को मिटा दिया है। मैंने तुम्हारे अपराध को मिटा दिया है। तो यहाँ यह फिर से है, यह बात बार बार कही जाती है, वह निर्माता है और इसलिए वह मुक्तिदाता हो सकता है। एक मूर्ति आपको छुटकारा नहीं दिला सकती क्योंकि छुटकारा चीजों के क्रम में बदलाव का सुझाव देता है, परंतु जिसने तुम्हें बनाया है एक बिल्कुल नए प्राणी के रूप में, वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने और तुम्हें छुड़ाने में सक्षम है। आज जब हम बुत परस्ती के विश्व दृष्टिकोण पर वापस चले गए हैं, तो यह विचार हास्यास्पद है कि आप और मैं रूपांतरित हो सकते हैं। खैर, बिल्कुल नहीं। आप जो हैं सो हैं। आप अपनी विरासत से आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने जीन से आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने परिवेश से परे नहीं जा सकते। परिवर्तन? ना समझ। नहीं। आधुनिक विश्व में मुक्ति क्या है? आत्मबोध। आपको बस यह पता चलता है कि आप कौन हैं और वही बने, अपनी कंडीशनिंग के अलावा कुछ और बने, उन सभी चीजों से अलग कुछ बने जो आपको बनाने में लगी हैं। अरे नहीं, नहीं, नहीं। और फिर भी जो अद्भुत कहानियां आप सुनते हैं। रूस में पीटर और माशा के साथ काम करने वाले लोगों में से एक रूसियों के अफगानिस्तान जाने पर अफगानिस्तान चला गया। ऐसा लगता है कि हम अफगानिस्तान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सीख पाए हैं। अंग्रेजों ने इसके साथ कुछ करने की कोशिश की और इसे छोड़ दिया। रूसियों ने इसके साथ कुछ करने की कोशिश की और इसे छोड़ दिया। और अब ऐसा लग रहा है कि हम उसी स्थिति में हैं। लेकिन शराबी बन गया, अफगानिस्तान से वापस आया, ड्रग डीलर और ठग बन गया और रूसी जेल में भेज दिया गया, जो एक अच्छी जगह नहीं है। और किसी तरह वहां एक बाइबल मिल गई और वह रूपांतरित हो गया है। और उन कहानियों को हजार हजार गुना बढ़ाया जा सकता है। सृष्टिकर्ता छुड़ाने में सक्षम है। सृष्टिकर्ता परिवर्तन करने में सक्षम है। और मैं नहीं जानता। नहीं, और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय शायद आपको खुद को साकार करने में मदद करने के। इसलिए एक समलैंगिक के रूपांतरित होने के बारे में बात करना हमारी दुनिया के लिए केवल हास्यास्पद नहीं है, यह उससे भी बदतर है। यह वास्तविकता को नकारना है और यह दुखद है। ठीक है, तो एक बार फिर यहां क्या हो रहा है? सेवकत्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के उद्देश्य के रूप में अनुग्रह की पेशकश की जा रही है। मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मेरे सेवक हो हे इज़राइल, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को बादल के समान और तेरे पापों को कोहरे के समान मिटा दिया है। मेरे पास लौट आओ क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। मूर्तियों के खिलाफ इस पूरे मामले की निचली रेखा यही है। वे तुम्हें बचा नहीं सकते, मैं कर सकता हूं। फिर श्लोक 23। इस समय क्यों फूट फूट कर गाना शुरू करें? सृष्टि रचिता की आराधना कर रही है। गाओ हे स्वर्ग, हे पृथ्वी की गहराइयों चिल्लाओ, गायन में आगे बढ़े ओह पहाड़ों, ओह जंगल इसका हर पे, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इसराइल में उसकी महिमा होगी। रोमियो अध्याय 8 को देखें। यहां की घड़ी 4:20 बताती है, इसलिए हम अच्छी स्थिति में हैं। अच्छी बनावट। जब तक सुबह के 4 नहीं बजते मुझे इसके बारे में पता नहीं चलता। श्लोक 22। क्षमा करें, श्लोक 20। क्योंकि सृष्टि व्यर्थता के अधीन थी, स्वेच्छा से नहीं, बल्कि उसके अधीन जिसने इसे इस आशा से अधीन किया कि सृष्टि स्वयं क्षय के बंधन से मुक्त हो जाएगी और बच्चों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी भगवान की। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक प्रसव पीड़ा में कराहती रही है। हाँ, हमारी मुक्ति में सृजन की हिस्सेदारी है। यदि मानव जाति को छुटकारा दिलाया जा सकता है तो सृष्टि को भी बचाया जा सकता है। तो सृष्टिकर्ता की मुक्ति की घोषणा गायन का एक कारण है। यदि आप अध्याय 42 श्लोक 10 पर नजर डालें तो याद रखें, मैंने आपसे 2 सप्ताह पहले इस तथ्य के बारे में बात की थी कि यहाँ 2 नौकरों को दर्शाया गया है। भयभीत सेवक अर्थात इसराइल, जिसे परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है, और उन्हें बस इसमें आनंद मनाना चाहिए। और फिर वहाँ आज्ञाकारी सेवक, जिसका परिचय 42 में दिया गया है। तो श्लोक 10 को देखें। प्रभु के लिए एक नया गीत गाएं। पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति हो रही है, हे समुद्र तक के सब लोगों और जो उसमें भरते हैं, अर्यात समुद्रतों और उनके रहने वालों। गाने का कारण क्या है? भगवान की मुक्ति और जिस मुक्ति की ओर हमें यहाँ संकेत दिया गया है, वह उसके सेवक, उसके आदर्श सेवक के माध्यम से है, जो हमारी सेवकाई को संभव बनाएगा। ठीक है, अध्याय 45 पर वापस। क्षमा करें, 44। श्लोक 25 और 26 में भगवान के ईश्वरत्व का प्रमाण क्या है? उनकी भविष्यवाणियां सच होती हैं। जबकि झूठे भविष्य बताने वाले और बुद्धिमान लोग अंतः मूर्खी लगते हैं। तो पद 26 में भगवान ने क्या कहा है? वह क्या वादा करता है? यरूशलेम का पुनर्निर्माण होने जा रहा है। यह फिर से आबाद होने वाला है। अब याद रखें कि मैंने पहले क्या कहा है। जब भविष्यवक्ताओं ने निर्वासन की भविष्यवाणी की तो लोगों ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि हमें निर्वासन में जाना पड़ा तो हम लोगों के रूप में गायब हो जाएंगे और निःसंदेह परमेश्वर के सभी वादे विफल हो जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब भविष्यद्वक्ताओं ने बंधुवाई से लौटने की भविष्यद्वाणी की तो उन्होंने कहा, नहीं, कोई भी बंधुवाई से कभी नहीं लौटा। निर्वासन का पूरा उद्देश्य इन सभी अलग अलग संस्कृतियों को एक प्रकार के समरूप द्रव्यमान में समाहित करना है। तो नहीं, हम कैद में नहीं जाएंगे। और नंबर 2, अगर हम कैद में चले गए तो फिर कभी हमारे बारे में नहीं सुना जाएगा। तो नहीं और नहीं, भगवान हाँ और हाँ कहते हैं। तुम बंधुवाई में जाओगे और मैं तुम्हें बंधुवाई से निकालूंगा। बहुत विशिष्ट भविष्यवाणियां। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। वहां कई संभावनाएं हैं जो निश्चित रूप से उस दिशा में इशारा कर सकती हैं। लेकिन अब भगवान ने आगे बढ़ा दिया है। श्लोक 28, वह उद्धारकर्ता का नाम बताता है। इसलिए तुम बंधुवाई में जाने वाले हो और बंधुवाई से बाहर आने वाले हो, और कुसरू नाम का एक मनुष्य तुम्हें बाहर निकालेगा। अब फिर हम इससे बहुत परिचित हैं। हम जानते हैं कि ऐसा हुआ था। लेकिन आप जानते हैं साइरस कौन? हम किसी साइरस को नहीं जानते। नबूकदनेस्सर, नबूकदनेस्सर, सन्हेरीब, साइरस, साइरस। तो अध्याय 45 श्लोक 1 से 8 में हमें बताएं कि भगवान साइरस के लिए क्या करने जा रहा है और वह उसके माध्यम से क्या करने जा रहा है। सूचना 45.1, साइरस को भगवान का मसीहा कहा जाता है। मेरा अभिषिक्त, मेरे मसीहा। तो यहोवा साइरस को क्या विशेषाधिकार उपलब्ध कराने जा रहा है? वह उसके लिए क्या करने जा रहा है? गेट तोड़ने जा रहे हैं? और क्या? राष्ट्रों को वश में करो, राजाओं से उनके आभूषण छीन लें। श्लोक 3, उसे वह खजाना देने जा रहा हूं जो अंधेरे खजाने के घरों में छिपा हुआ है। और वह श्लोक 3 के अनुसार ऐसा क्यों करने जा रहा है? चलो फिर शुरू करें, ताकि आपको पता चल सके। आप में से कुछ लोग निर्गमन में मेरे साथ थे। फिरौन कल लगभग इसी समय आकाश टिड्डियों से भर जाएगा, ताकि आपको पता चल सके। यहाँ यह फिर से है, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हें दुनिया के खजाने देने जा रहा हूँ ताकि तुम जान सको। और मैं क्यों चाहता हूँ कि आप मेरा नाम जाने? पद चार, मेरे दास याकूब के निमित्त। और फिर मुझे पद चार का अंतिम भाग पसंद है। आप मेरा नाम नहीं जानते साइरस, लेकिन मैं आपका नाम जानता हूँ। फिर श्लोक पांच में, इनमें से एक और अद्भुत मैं कथन हूँ, मैं यहोवा हूँ, वहाँ कोई और नहीं है, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, फिर भी मैं तुम्हें सुसज्जित करता हूँ। मैं दुनिया में काम पर हूँ और मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं न केवल उन लोगों के साथ काम करता हूँ जो मुझे जानते हैं, मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ जो मुझे नहीं जानते। मैं निर्माता हूँ, मैं यहोवा हूँ। और एक बार फिर से, वह इसे क्यों कर रहा है? आयत छः, ताकि लोग जान सकें, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम्हारा उपयोग कर रहा हूँ ताकि तुम जान सको और ताकि लोगों को पता चल सके, सूर्य के उगने से लेकर पश्चिम तक। और यहाँ हम फिर जा रहे हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं यहोवा हूँ और कोई दूसरा नहीं है। क्या आपको लगता है कि शायद वह कोई बात कहने की कोशिश कर रहा है? हाँ, हाँ। अब श्लोक सात, अक्सर लोगों को परेशान करने वाला होता है, विशेषकर जैसा कि किंग जेम्स में लिखा गया था, मैं प्रकाश बनाता हूँ और अंधकार पैदा करो, मैं शांति बनाता हूँ और बुराई पैदा करो। किंग जेम्स यही कहते हैं। मेरे पास यहाँ अंग्रेजी मानक संस्करण है, मैं कल्याण करता हूँ और विपत्ति पैदा करते हैं। और यह शायद थोड़ा अधिक है सटीक, लेकिन यहाँ जो मुद्दा उठाया जा रहा है वह क्या है? मैं भगवान हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप देखो, यहीं पर हमें करना ही होगा, सावधानी से नेविगेट करें कि संभावनाएं हैं जो निश्चित रूप से उस दिशा में इशारा कर सकती हैं। बुतपरस्त विश्वदृष्टि अच्छाई और बुराई देखता है। स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में यह बस वास्तविकता का हिस्सा है। तो बुरी चीजें क्यों होती हैं? खैर, क्योंकि बुरी शक्ति अच्छे बल पर काबू पा लिया और इतनी बुरी चीजें होती हैं। अच्छा बल पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था इसे रोकने के लिए, और जब अच्छी चीजें होती हैं तभी अच्छा बल है बुरी शक्ति पर काबू पाता है, और अच्छी चीजें होती हैं इसे द्वैतवाद कहा जाता है। दो बुनियादी संस्थाएं, वह सदैव अस्तित्व में हैं, उनको बुलाएं, यिन और यांग, सकारात्मक नकारात्मक। यशाया कह रहा है, नहीं नहीं, केवल एक ही है, शाश्वत इकाई, और इसलिए वह सब कुछ जो है उसके पास वापस चला जाता है। और ये दिलचस्प है, बाइबल के दृष्टिकोण से बुराई एक तरह से नकारात्मक है, यह एक तरह से कुछ भी नहीं है, यह अच्छे का अभाव है, यह कोई सकारात्मक बात नहीं है, वह स्वयं अस्तित्व में है। अब मैं यह पहले भी कह चुका हूं, परंतु तुम मैं जो कुछ कहता हूं वह सब भूल जाते हो, तो मैं इसे फिर से कहूंगा, हम प्राथमिक कारण और द्वितीयक कारण के बीच अंतर कर सकते हैं। और तृतीयक कारण, और इससे हमें मदद मिलती है। भगवान ने किया, मेरे साथ वह बुरा घटित करो। नहीं, लेकिन क्या भगवान ने इसकी इजाजत दी? क्या उसने कोई ऐसी दुनिया बनाई जिसमें अच्छे लोगों के साथ बुरा हो सकता है? हाँ, वह था। तो पुराना नियम खास दिलचस्पी नहीं है। माध्यमिक और तृतीयक में वे घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, ईश्वर अकेला है इसके लिए जिम्मेदार। कोई बेबीलोनियाई भगवान नहीं, कोई राक्षस नहीं, कुछ और नहीं। अगर ऐसा हुआ, ईश्वर अंततः जिम्मेदार है। यही वह मुद्दा है जो वे घर पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह बहुत अजीब बात है। बुतपरस्त दुनिया में और आधुनिक दुनिया में, ठीक है। फिर आगे बढ़ना, फिर एक बार ये रहा ये गाना, ऊपर से हे स्वर्ग की वर्षा, बादलों से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी को खुलने दो कि उद्धार और धर्म फल लाए, पृथ्वी उन दोनों को उगने दे, मैं प्रभु इसे बनाया है। अगर ऐसा होता है, मैंने यह किया है, अब क्या हो रहा है? छंद 9-13 तक ऐसा लगता है कि हम काफी तेजी से गियर बदलते हैं। क्या चल रहा है? भगवान क्या कह रहे हैं लोगों को? वह उन पर क्या करने का आरोप लगा रहा है? धिक्कार है उस पर जो उसके साथ प्रयास करता है और जिसने उसे बनाया है। मिट्टी के बर्तनों के बीच एक बर्तन, क्या मिट्टी उससे कहती है जो उसे बनाता है? आप क्या बना रहे हैं, या आपके काम में कोई हैंडल नहीं है? धिक्कार है उस पर जो पिता से कहता है, आप क्या पैदा कर रहे हैं? या किसी महिला को डोट, आप किसके साथ प्रसव पीड़ा में हैं? इसराइल का पवित्र यहोवा यों कहता है, जिसने उसे बनाया, आने वाली चीजें मुझसे पूछो, क्या तू मुझे मेरे बच्चों और मेरे हाथ के काम के विषय में आज्ञा देगा? मैंने प्रेवी बनाई और उस पर मनुष्य उत्पन्न किया, यह मेरे हाथ ही थे जिन्होंने आकाश तक फैलाया। मैंने उनके सभी यजमानों को आदेश दिया, कहीं भी नहीं। श्लोक 13, वह किस बारे में बात कर रहा है? हाँ, वह कौन है जिसे मैंने धर्म के लिए उभारा? साइरस? हाँ, हाँ, बिल्कुल साफ, लोग कह रहे हैं। जरा ठहरिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। साइरस एक बुतपरस्त है, वह नहीं जानता था कि तुम कौन हो। आप ईसाई कार्य करने के लिए किसी बुतपरस्त का उपयोग नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, हम जानते हैं कि आप कैसे डिलीवरी करते हैं। हमें एक हिब्रू बच्चा प्राप्त करना है, और हमें उसे एक टोकरी में परात नदी में रखना पड़ा, और बेबीलोन की राजकुमारी उसे ढूंढ लेगी, और बेबीलोन की अदालत उसे प्रशासन और सेना में प्रशिक्षित करेगी शक्ति, और फिर वह आएगा और वह हमें छुड़ाने का प्रयास करेगा, और यह काम नहीं करेगा, और उसे 80 वर्षों के लिए अरब के रेगिस्तान में जाना होगा, और फिर उसके बाद वह एक तरह से अपना काम शुरू कर देगा, और वह वापस आएगा और वह सब कुछ करेगा। इसी तरह आप भगवान का उद्धार करते हैं। यदि आप भूल गए हैं और भगवान कहते हैं, आप पहिए पर रखे बर्तन हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसे बनाना है? मैं कबूल करता हूं कि मैंने ऐसा कई बार किया है। भगवान, आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं। हे भगवान, यह वह जगह नहीं है जहां आपने हैंडल लगाया है। इसलिए वह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वह जो कर रहे हैं वह नहीं कर पा रहे हैं, या उन्हें नहीं पता कि वह क्या कर रहे हैं। तो फिर श्लोक 14 से 19 में वह क्या कहता है? प्रभु ऐसा कहते हैं, मिस्र का धन और कुश और सबियाई लोगों का व्यापार तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हारा हो जाएगा। वे आपका अनुसरण करेंगे और वे जंजीरों में जकड़े हुए आएंगे और तुम्हें प्रणाम करेंगे। अब उस बिंदु तक हम सोच सकते हैं कि वह साइरस से बात कर रहा है, लेकिन देखो वह कैसे आगे बढ़ता है। वे आपसे विनती करेंगे कि निस्संदेह ईश्वर आप में है और कोई दूसरा नहीं, उसके अलावा कोई भगवान नहीं। तो ऐसा लगता है कि नहीं, वह मुक्ति प्राप्त इज़राइल से बात कर रहा है, भविष्य में वहां से बाहर। अब श्लोक 15 में राष्ट्र क्या कहते हैं? यह सचमुच तू परमेश्वर है जो अपने आप को छिपाता है। हे इसराइल के उद्धारकर्ता परमेश्वर, वे सब लज्जित और भ्रमित हो जाते हैं और मूर्ति बनाने वाले एक साथ भ्रमित हो जाते हैं, परंतु इसराइल को यहोवा ने अनंत उद्धार से बचाया है। तुम्हें अनंत काल तक लज्जित या निराश नहीं होना पड़ेगा। अब श्लोक 18 और 19 में भगवान की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, मैं भगवान हूं, मैंने स्वर्ग बनाया। यह सही है, यह सही है। राष्ट्र कह सकते हैं कि हे बालक, तुम ईश्वर इज़राइल हो। वह सचमुच अस्पष्ट है। यह पता लगाना सचमुच कठिन है कि वह क्या कर रहा है। और भगवान कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कोई छुपकर बात नहीं की। मैंने याकूब की संतान से यह नहीं कहा कि मैं व्यर्थ ही मुझे ढूंढता हूं। मैं प्रभु सत्य बोलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि क्या सही है। इस किताब का महत्व, यदि आपके पास यह पुस्तक नहीं है तो हां, आप कह सकते हैं कि ईश्वर के तरीके एक रहस्य हैं। कौन जानता है कि वह क्या कर रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। भगवान कहते हैं, अरे मैंने कोई गुप्त बात नहीं कही। मैंने इस दुनिया को अराजकता फैलाने के लिए नहीं बनाया है। बुतपरस्त यही सोचते हैं। मैंने इस दुनिया को उद्देश्य और डिजाइन के साथ बनाया है और मैंने घोषणा की है कि मेरा उद्देश्य और मेरा डिजाइन क्या है। वहां है। हमारे लिए किताब को दिखावा करना बहुत आसान है। अब आप जानते हैं कि मैं यहां गायक मंडली को उपदेश दे रहा हूं। आप वे लोग हैं जो पुस्तक के बारे में दिखावा नहीं करते, लेकिन हमारे लिए यह करना अभी भी बहुत आसान है। इसे एक सम्मानित स्थान पर रखने के लिए, लेकिन वास्तव में यह जानने में समय बर्बाद करने के लिए नहीं कि भगवान क्या कह रहे हैं। यहां आप में से अधिकांश लोग इतने बूढ़े होंगे कि यह जान सकेंगे कि जब मैं सियर्स कैटलॉग की बात करता हूं तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। उसे याद रखो, उपदेशक मिलने आए। घर की महिला ने अपने छोटे लड़के से कहा, हे प्रिय, जाओ वह बड़ी किताब ले आओ जो माँ को बहुत पसंद है। बच्चा सियर्स कैटलॉग के साथ वापस आया। हमारे बच्चे जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं। मैंने कोई छुपकर बात नहीं की है। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और मैं कैसे काम करता हूं, मेरी योजनाएं क्या हैं, तो यह यहां है। सवाल यह है कि क्या आप इसे खोजने के लिए थोड़ी सी खुदाई करने को तैयार हैं? ठीक है। अब श्लोक 20 से शुरू होकर 46.7 तक चलते हुए यहाँ एक अद्भुत अद्भुत चित्र है। एक बार फिर परमेश्वर राष्ट्रों को बुला रहा है। अपने आप को इकट्ठा करो और आओ। राष्ट्रों में से बचे हुओ, तुम सब एक साथ आओ। उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि कौन उनकी लकड़ी की मूर्तियां लेकर जाता है और ऐसे भगवान से प्रार्थना करता रहता है जो उन्हें नहीं बचा सकता। अब श्लोक 46.1 को देखें। बाल और नबो बेबीलोन के दो देवता हैं। बेल और नीबो। बेल झुक गई, नीबो झुक जाता है। उनके आदर्श पशु और पशुधन हैं। यह वाक्य प्राप्त करें। ये चीजें जो आप ले जाते हैं वे थके हुए जानवरों पर बोझ के रूप में पैदा होती हैं। वे झुकते हैं और वे एक साथ झुकते हैं। वे बोझ तो नहीं बचा सकते परंतु स्वयं बंधुवाई में चले जाते हैं। हे याकूब के घराने, मेरी सुनो। इसराइल के घराने के सब बचे हुओं को जो तेरे जन्म से पहले से मेरे द्वारा उठाए गए हैं, तेरे गर्भ से लेकर बुढ़ापे तक मैं ही तुझे उठाए रहूंगा और बाल सफेद होने तक भी मैं ही तुझे उठाए रहूंगा। मैंने बनाया है, मैं इसे सहन कर लूंगा, मैं ले जाऊंगा और बचाऊंगा। अब यहां विरोधाभास क्या है? बुतपरस्त क्या कर रहे हैं? वे अपने देवताओं को ले जा रहे हैं। और प्रभु क्या कर रहे हैं? हमें ले जा रहे हैं, हमें ले जा रहे हैं। आपको आपका निर्माता ले जा सकता है या आपने जो बनाया है उसे आपको ले जाना होगा। हम में से बहुतों के घरों में छोटी छोटी मूर्तियां नहीं हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में बनाई गई चीजों के बोझ तले दबे हुए हैं। मैंने इसे पहले भी उद्धृत किया है, लेकिन जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे इसका एहसास हुआ और यह अब भी मेरे लिए बज रहा है। डिट्रिच बोनहोफर ने कहा कि आप वास्तव में केवल उसी चीज के मालिक हो सकते हैं जिसके बिना आप ईमानदारी से खुद को बेहतर देख सकते हैं। आप वास्तव में केवल उसी चीज के मालिक हो सकते हैं जिसके बिना आप ईमानदारी से स्वयं को बेहतर देख सकते हैं। अगर मुझे इसे पाना है, अगर मुझे इसे पाना है तो यह मेरा मालिक है। इसलिए मैं हमेशा उस तस्वीर से मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। अपने आप को इकट्ठा करो और आओ। तुम राष्ट्र के बचे हुए लोगों एक साथ आओ। उन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि कौन उनकी लकड़ी की मूर्तियां लेकर चलता है और ऐसे भगवान से प्रार्थना करता रहता है जो बचा नहीं सकता। श्लोक 21 और 22 में देवताओं के खिलाफ मामले का एक और बयान दिया गया है। घोषित करें और अपना मामला एक साथ प्रस्तुत करें, उन्हें एक साथ सलाह लेने दीजिए। तो श्लोक 21 में भगवान क्या दावा कर रहे हैं? यह मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था, मैंने इसे पुराना घोषित कर दिया। इससे क्या सिद्ध होता है? मेरे अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। एक धर्मी परमेश्वर और एक उद्धारकर्ता, मेरे बगल में कोई नहीं है। पद 23, मैंने अपनी ही शपथ खाई है। उत्पत्ति 15 में परमेश्वर ने यही किया जब उसने इब्राहिम से कहा कि तुम्हारे पास आकाश के तारों या समुद्र के किनारे की रेत से भी अधिक बच्चे होंगे। कुछ जानवरों को आधा आधा काटें और धूप बत्ती और मशाल बीच से गुजारें। और इब्रानियों के लेखक का यह बिल्कुल सही है। परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाई कि उससे बढ़कर कोई नहीं। जब मूसा ने आधा खून लिया और वेदी पर छिड़का तो परमेश्वर अपनी ही शपथ खा रहा था। यदि ईश्वर ने कभी इस वाचा को तोड़ा तो ईश्वर उसे मार डाले। मैंने अपनी ही शपथ खाई है कि मेरे मुंह से धर्म का ऐसा वचन निकला है जो लौटकर न आएगा। पुस्तक के इस भाग में भगवान बार बार अपने वचन के बारे में बात करते हैं जो अपरिवर्तनीय है और अपना उद्देश्य पूरा करेगा। हर घुटना मेरे लिए झुकेगा, हर जीभ निष्ठा की शपथ लेगी। पॉल स्पष्ट रूप से इस कविता को उठा रहा है जब वह यीशु के बारे में बात करता है जिसने खुद को मृत्यु तक दीन बना लिया है। हर घुटना झुकेगा और हर जीभ घोषणा करेगी कि यीशु मसीह हैं, और एक यहूदी के लिए इसका क्या मतलब है? यहोवा, देखिए हमें वह याद आता है। ओह, यीशु मसीह मालिक हैं, यीशु मसीह प्रभारी हैं, यीशु मसीह प्रभु हैं, यीशु मसीह यहोवा है। यह चौंकाने वाली बात है कि प्रारंभिक ईसाई पंथ का अर्थ क्या है? यीशु मसीह प्रभु हैं, वह यहोवा है। ठीक है, हम वास्तव में समय पर काम पूरा करने के करीब पहुंच रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी अध्याय 46 वास्तव में उन सभी बातों का सार प्रस्तुत करता है जो इन पिछले चार अध्यायों में कही गई हैं। नंबर एक, भगवान की यह तस्वीर जो हमें संभालती है। उसने हमें बनाया और वही हमें आगे बढ़ाएगा। फिर श्लोक 5, 6 और 7 उस विचार को समाप्त करते हैं। तू मुझे किससे उपमा देगा और किससे तुल्य ठहराएगा और किससे तुलना करेगा कि हम एक समान हो जाएं? क्या आपको याद है कि हमने उसे आखिरी बार कहां देखा था? अध्याय 40। जो बटुए में से सोना लुटाते हैं वे तराजू में चांदी तौलते हैं, और सुनार को किराए पर लेते हैं वह उसे देवता बनाता है, और वे गिरकर दंडवत करते हैं। वे इसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं, वे इसे ले जाते हैं। उन्होंने उसे उसके स्थान पर रख दिया और वह वहीं खड़ा हो गया। यदि कोई इसे पुकारता है तो यह अपनी जगह से हिल नहीं सकता, यह उत्तर नहीं देता या उसे परेशानी से नहीं बचाता। वहां आपकी पसंद है। आप अपना खुद का भगवान बना सकते हैं, लेकिन अंततः यह आपकी मदद नहीं कर सकता। यह याद रखना, अटल होना। हे अपराधियों, इसे स्मरण रखो, पुरानी बातों को याद करो। याद रखें, मैंने यह सब भविष्यवाणी की थी क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, मैं समय के दायरे से बाहर खड़ा रचनाकार हूं, और यहां इनमें से आखिरी मैं हूं। मैं भगवान हूं और कोई नहीं है, मैं भगवान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। प्रारंभ से ही अंत की घोषणा करना। वहां आरंभ में ही मैंने अंत की घोषणा कर दी। आप एक गोलाकार दुनिया में समय के एक गोलाकार दृश्य में देखते हैं, न तो कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत है। पूर्वजों ने समय की कल्पना एक सांप के रूप में की थी जो अपनी ही पूंछ खा रहा हो। न कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत, भगवान कहते हैं हां है। शुरुआत में मैंने घोषणा की कि चीजें कैसे समाप्त होने वाली हैं। यह कहने से मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपना सब प्रयोजन पूरा करूंगा। अधिकतम सुरक्षा, आराम और आनंद के साथ जीवित रहने के अलावा देवताओं का कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान का एक उद्देश्य है कि हमें उनके चरित्र को साझा करना चाहिए, कि हम सदैव सर्वदा उसके साथ संगति रखें। मैं पूर्व से अहेर पक्षी को और दूर देश से मेरे युक्ति वाले को बुलाता हूं। मैंने बोल दिया है, मैं इसे पूरा करूंगा। मैंने संकल्प किया है, मैं इसे पूरा करूंगा। अब भगवान को इन लोगों के बारे में कोई भ्रम नहीं है। हे हठीले मन, मेरी बात सुनो। तुम जो धर्म से दूर हो, मैं अपनी धार्मिकता को निकट लाता हूं। यह ज्यादा दूर नहीं है और मेरे उद्धार में विलंब न होगा। मैं सियोन में अपनी महिमा इसराइल का उद्धार करूंगा। अब इसका क्या मतलब है? आइए इस बारे में बात करें और फिर हम बंद कर देंगे। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे परमेश्वर हमें छुटकारा दिलाए? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इसकी आशा कर रहा था, क्योंकि यह बिल्कुल सही है। उनका पश्चाताप नहीं, उनका विश्वास नहीं। अनुग्रह पूरी तरह से ईश्वर प्रवर्तित है। उन्होंने इस मुक्ति के योग्य बनने के लिए एक भी काम नहीं किया है जिसका वादा भगवान कर रहे हैं, और न तो आप और न ही मैं ऐसा कर सकते हैं। रोमियो अध्याय 1-5 तक का पूरा सार यही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप और मैं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से ईश्वर के दृष्टिकोण से है और इससे हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। इससे हमें पश्चाताप करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। इसे हमें विश्वास रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए और इसे हमें ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं उस व्यक्ति की तरह बनना चाहता हूं जो बिना किसी कारण के सुअर के बाड़े में पहुंच गया और कहा, घर आओ। हम में से जो लोग निकोलसविले चर्च में जाते हैं, उन्होंने उड़ाव पुत्र की कहानी फिर से सुनी। वास्तव में इसका वास्तव में गलत नाम रखा गया है। यह उड़ाव पुत्र नहीं है, यह उड़ाव पिता है। परंतु कोई भी दृष्टांत अपने आप में पूर्ण नहीं है। यदि वह कहानी सचमुच पूरी होती तो पिता दूर देश में चले जाते और लड़के के साथ सुअर बाड़े में घुस जाते। पुनः कृपया मुझे गलत न समझें। मैं यह नहीं कह रहा कि यीशु ने इसे सही नहीं समझा, कभी नहीं। लेकिन मैं बस यह कह रहा हूं कि अगर हम अनुग्रह के दृष्टांत के बारे में बात कर रहे होते तो वह यही होता। मैं इसे ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं और वो हाँ ठीक है, मैं मुड़ता हूं और पिताजी वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं और आखिरकार जब मैं वहां पहुंचूंगा तो वह मुझसे प्यार करेंगे। नहीं, यह उससे भी आगे जाता है, यह उससे आगे चला जाता है। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद कि जब हम अपने पाप और निराशा में असहाय थे, जब हम अपने अहंकार और अभिमान में असहाय थे, तो आप हमारी अधर्मता में हमारे पास आए और यीशु मसीह में हमें वह सब कुछ दिया जो हमें मुक्ति और भक्ति के लिए चाहिए था। हम गवाही देते हैं कि आप महान हैं। तुम ही मेरी जिंदगी हो, आप जीवन का स्रोत हैं, आप अपने आप में सब कुछ हैं और आपने हमें यह सब मुफ्त में दे दिया है। क्या आप नहीं समझते प्रभु यह कितना मूर्खतापूर्ण है? मेरा मतलब है, हम आपके उपहार ले सकते हैं और उन्हें रद्दी में फेंक सकते हैं, लेकिन आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आप हमारे द्वारा आपका दिल तोड़ने का जोखिम उठाने को तैयार हैं। धन्यवाद। इस कमरे में हम में से प्रत्येक आज रात आपसे कहेगा कि हमारे जीवन में अनुग्रह के साधनों के लिए धन्यवाद। हम में से कुछ के लिए माता पिता, हम में से कुछ के लिए संडे स्कूल के शिक्षक, हम में से कुछ के लिए मित्र, हम में से कुछ के लिए जीवन साथी, हम में से कुछ के लिए एक उपदेशक। हालांकि यह आया प्रभु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हमें अपनी बाहों में लेने के लिए धन्यवाद। ओह, मैं महान हूं। आपके नाम पर आमीन। यह डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट और यशायाह की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र संख्या 22, यशायाह अध्याय 44-46 है।